नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल होगा मतदान। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे किए। राज्य सरकार ने कहा, प्रदेश में सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य हो गई है। सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ताओं को जल्द ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी के किनारे और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा करते हुए कहा कि राज्यसभा की 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। भाजपा नेता और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों में चुनाव को लेकर कोई एकमत नहीं है।
एनडीए के सभी जितने भी गठबंधन दल के विधायक उनके बुलाकर आज मॉक पोल कराया गया, सभी को एक प्रशिक्षण दिया गया जिससे कि वोट देने में किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं हो जाए और सभी लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझाया गया। उनको अपने विधायक पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है और विश्वास नहीं होने के चलते उनको होटल में रखना पड़ रहा है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने कहा कि जीत के लिए जरूरी आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं।
आंकड़ा हम लोग के पक्ष में है, 5 का 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीतेंगे। जितने आंकड़े की आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा आंकड़ा हम लोग के पास है, इसीलिए हम सब लोग आश्वस्त हैं, कहीं कोई जो है असमंजस की स्थिति नहीं है।
बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मतदान की प्रक्रिया की जानकारी के लिए आज एनडीए विधायकों को मॉक पोल का प्रशिक्षण दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर विधायकों को मतदान करने की पूरी जानकारी दी गई। इधर राजद ने अपने विधायकों को पटना के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। महागठबंधन के अन्य नेता भी यहां जुटे हैं। राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए विधायकों को एकजुट रखने के लिए राजद की ओर से ये कदम उठाया गया है। इस बीच चुनावी रणनीति के लिए एनडीए में भी बैठकों का दौर जारी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर जदयू विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इससे पूर्व आज सुबह जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राज्यसभा की एक सीट पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि एनडीए चुनाव में पूरी तरह बिखर चुका है।
महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की जीत निश्चित है। हमारे पूरे विपक्ष के 41 विधायक तो इंटैक्ट हैं ही, एनडीए के कई विधायक संपर्क में हैं। कल पता चल जाएगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन महागठबंधन की रणनीति सफल होती है।
गौरतलब है कि एनडीए के 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। एनडीए के 5वें प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। राजद के अमरेंद्र धारी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा चुनाव की मतगणना 5 बजे से शुरू होगी और देर रात तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 1 चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटों की गिनती एक साथ 4 मई को होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी खुदरा दुकान या वितरक के पास एलपीजी की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। संयुक्त सचिव ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल बुकिंग करने की आग्रह की है।
सभी देशवासियों से अपील है कि कृपया डिजिटल बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करें। जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले।
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडरों का वितरण भी शुरू हो गया है।
कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए, इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं।
इधर राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य हो गई है। गैस कंपनियों की ओर से कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं ने सिलेंडर की बुकिंग कर ली है उन्हें जल्द ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी के किनारों और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने पटना निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कई राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर व्यक्तिगत मामलों से परे व्यापक जांच की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मध्य पूर्व से भारत के लिए विशेष उड़ानों की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
शारजाह से दिल्ली, कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड, मुंबई और तिरुवनंतपुरम के लिए उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई गई है। एयर इंडिया ने एक वक्तव्य में बताया कि दो उड़ानें रस अल खैमा से कोझिकोड और कोच्चि तक भी संचालित होंगी। एयरलाइन ने बताया कि ये उड़ानें स्लॉट की उपलब्धता और संचालन के समय की मौजूद स्थितियों के आधार पर संचालित की जाएंगी। एयरलाइन ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के विमान पत्तन प्राधिकरण के निर्देशों के बाद क्षेत्र में अस्थायी परिचालन कम कर दिए गए हैं। विमान संचालकों ने कहा कि रद्द की गई या अस्थायी रूप से निरस्त हुई सेवाओं के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भविष्य की किसी तिथि के लिए उड़ान फिर से बुक कर सकते हैं या पूर्ण रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं इंडिगो ने बताया कि उनकी उड़ान सेवाएं दुबई में प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इस कारण उड़ान समय सारणी में बदलाव हुए हैं। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से अगले महीने की 10 तारीख तक होने वाली कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द कर दी है। बोर्ड ने बताया कि पहले स्थगित की गई परीक्षाएं भी रद्द रहेंगी। इधर पटना के जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड स्तर पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम के लिए 28 धावा दल का गठन किया गया है। इन धावा दलों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षकों एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है। घरेलू एलपीजी से संबंधित मामलों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612221918 जारी किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना और थावे के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के परिचालन से लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने का अनुभव मिलेगा।
आज मैं रेलवे प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दानापुर के पूरे प्रबंधन का, कि आज पटना से थावे के लिए ये ट्रेन सेवा शुरू हुई है। थावे आध्यात्म का केंद्र है, माता रानी का केंद्र है, स्वयं सिद्ध माता रानी वहां उपस्थित हैं। यहां के भक्तों का आग्रह रहता था कि हम लोग को वहां जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था हो, तो आज वो हुई है।
राज्य में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से नशा मुक्त बिहार थीम पर पटना के गांधी मैदान से मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके बहुत इम्पोर्टेंट है एक मैराथन में अर्ली मॉर्निंग रनिंग, क्योंकि हेल्दी भी रहना चाहिए। सबको पता है हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तो ऐसा मैराथन होता रहना चाहिए।
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा परिसर में बन रहे डिजिटल संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य वास्तुविद को संग्रहालय के निर्माण में कुछ बदलाव के निर्देश दिए। चक्रवाती हवा के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में अगले 7 दिनों के दौरान वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इस दौरान लोगों को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है।
दिनांक 16 मार्च 2026 राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिम भाग के जिलों कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
इधर आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतास के डेहरी में सबसे अधिक तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना पुलिस ने खगौल के नैनचक मुस्तफापुर गांव में छापेमारी कर 4 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 7.50 करोड़ रुपए आंकी गई है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। रोहतास के डेहरी में 4 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने किया। बिहार मिलिट्री पुलिस के परेड ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभाशाली निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। गोपालगंज में पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए मोबाइल पशु रथ चलाया जा रहा है। मुंगेर के तारापुर में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल महोत्सव के फाइनल में संग्रामपुर प्रखंड के बढ़ोनिया टीम ने असरगंज प्रखंड की अमैया टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामपुर चेक पोस्ट के पास एक वाहन से 1,152 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कल होगा मतदान। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के दावे किए। राज्य सरकार ने कहा प्रदेश में सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य हो गई है। सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ताओं को जल्द ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गंगा नदी के किनारे और बाढ़ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।